नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, लोग देश में और देश से बाहर घूमने की तैयारी कर रहे हैं, बुकिंग्स कर रहे हैं, और ऐसे में खबर आती है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की 87 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयर इंडिया के 300 सीनियर कर्मचारी एक साथ सिक लीव पर चले गए हैं। बीमारी का हवाला देकर उन्होंने छुट्टी ले ली है। लगभग 300 सीनियर केबिन क्रू सदस्यों ने आखिरी वक्त पर यह जानकारी दी और अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अचानक उड़ानें रद्द होने की शिकायत की। पिछले महीने ही एयर इंडिया एक्सप्रेस के चालक दल के एक ग्रुप का, जो प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मचारी यूनियन है, उसने एयरलाइंस में कुप्रबंधन का आरोप लगाया था। इनका कहना था कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। दूसरी तरफ एयरलाइंस का कहना है कि यात्रियों की असुविधा के लिए उसे खेद है और वो यात्रियों को मदद की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आने लगे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी सुजाता मुंबई से और परिमल कुमार दिल्ली से जुड़ेंगे। इन दोनों के पास हम चलें, उससे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरह से अचानक जो फ्लाइट रद्द हुई है उससे यात्री बेहद परेशान हैं। कई यात्रियों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उड़ानें अचानक रद्द होने की शिकायत की। कई का कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें पता चला कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, जिसके चलते उन्हें बहुत परेशानियां उठानी पड़ी हैं।
मुझे नहीं लगा ऐसा कोई सपोर्ट कर रहा था, कस्टमर सर्विस जरा भी नहीं है एयर इंडिया में।
कैंसिल करने में पहले सबसे ज्यादा कैंसिल करने में नंबर वन है वो लोग। फटाफट
कैंसिल तो तुरंत मार दिया उन्होंने स्टैंप के, कैंसिल हो गया है। लेकिन हाँ, लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ले रहे नहीं थे। हमने बोला भी उनको कि सर हमको जाने दीजिए। अभी मैं फिर से एक्चुअली मैं आया था इधर वापस देखने के लिए, लेकिन एयर इंडिया देख रहा हूँ तो मेरा मन नहीं कर रहा। मैं दूसरे काउंटर पर जाकर टिकट लेना पसंद करूँगा। इससे अच्छा इंडिगो में भी गया हुआ है, सऊदी एयरलाइंस में गया। इंडिगो मुझे बहुत अच्छी सर्विस लगी, बट ये एक गलत हो गया ऐसा मेरे साथ।
यानी ये एयरलाइंस अब आपको ट्रैवल करने लायक नहीं लग रही
है? कस्टमर सर्विस नहीं दिया, जिस तरह से जो स्टाफ बिहेव से बात कर रहा है ना, वो अच्छा नहीं लगा मुझे।
Our flight was yesterday 10:30. We came here at 7:30 like that. But we wait for here till more than six hours. But the flight was cancelled. We are inside the airport for 6 to 7 hours. We didn't get any water, anything, nothing we get in. Then we fight here with this office. Then all of the people who traveling with us, they went back to their home.
Actually, I'm supposed to fly today at 8:30 to Muscat. I came here at 5:00 in the morning. Then I came to know it was cancelled. So then I fight with them so much. Then finally I got the ticket for tomorrow.
तो आपने देखा कि किस तरह से जो यात्री हैं उन्हें खासी परेशानी हो रही है। कुछ लोगों को आखिरी वक्त पर पता चला है, कुछ लोग जो हैं वहां पहुंच चुके थे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, उन्हें पहले से जानकारी तक नहीं मिली। इस बारे में मुंबई में क्या कुछ स्थिति है, ज्यादा जानकारी दे रही हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी।
टाटा के साथ हो रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के मर्जर ने अब यात्रियों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है। एक और जहां टाटा के साथ मर्जर से पहले ही 300 से ज्यादा जो कैबिन क्रू है और चालक दल है एयर इंडिया एक्सप्रेस एयरलाइन के, वो मास सिक लीव पर चले गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो तमाम यात्री हैं उन्हें कई ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर जाने के बाद यात्रियों को सूचित किया जाता है कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है और साथ ही उनकी फ्लाइट या तो डीले से चल रही है, जिसके चलते यात्रियों को अब सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ रहा है। एक और जहां एयरलाइन ने एक स्टेटमेंट में ये स्पष्ट किया है कि 7 दिन के भीतर भीतर या तो तमाम यात्रियों को अपनी फ्लाइट रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन दिया गया है या फिर उनकी फ्लाइट का पूरा पैसा उन्हें रिफंड किया जा रहा है, ताकि किसी भी प्रकार की असंतुष्टता जो है वो यात्रियों में ना हो। वहीं दूसरी ओर चालक दल की क्या कुछ समस्या है टाटा के साथ मर्जर से पहले, उसे सुनकर और उसका समाधान निकालने की कोशिश यहाँ पर एयरलाइन द्वारा की जा रही है। लेकिन इस समय जो समर सीजन है और गर्मी के सीजन में ज्यादा से ज्यादा यात्री घूमने के लिए एयरलाइन का ही एक सहारा ढूंढते हैं, और अब जब हवाई यात्रा में इतनी ज्यादा उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते यात्रियों में अब कहीं ना कहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस को अवॉइड करने की भी भावना जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में मर्जर के पहले जो तमाम चालक दल है उनका कहना है कि जॉब जाने के खतरा और साथ ही सही समय पर जो पेमेंट है वो ना मिलने से जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि वो इस समय मास सिक लीव पर जा रहे हैं, और जब तक उन्हें उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता एयरलाइंस की तरफ से, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। ऐसे में यात्री इस समय बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एयरलाइंस ने भी अब आश्वासित किया है तमाम यात्रियों को और साथ ही DGCA को, जिन्होंने इस समय एक जवाब मांगा है इस पूरे समस्या को लेकर एयरलाइंस की ओर से। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो काम कर रहे हैं और तमाम यात्री और चालक दल को उनके इस तमाम दिक्कत का जो है समाधान मिले ये कोशिश भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मंगेश बिसे के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया।
तो किस तरह से ये जो दिक्कत है ये बड़ी होती जा रही है, समस्या क्या है और एयरलाइंस कर्मचारी आखिर क्यों खफा है? खफा कर्मचारियों ने दरअसल टाटा सन्स चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी 26 अप्रैल को लिखी गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ की इस चिट्ठी की कॉपी NDTV के पास है और इसमें टेक ओवर के बाद आ रही समस्याओं का जिक्र किया गया है। साथ ही इससे कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर भी नाराजगी जाहिर की गई है। कम अनुभवी लोगों को बड़ी जिम्मेदारियों देने का भी इसमें जिक्र किया गया है। ये कहा गया है कि मर्जर के बाद HRA, TA, DA जैसे भत्ते जो है वो छिने हैं और प्रक्रियाओं का सही पालन यहाँ पर नहीं किया गया। चिट्ठी में कर्मचारियों में बढ़ता असंतोष जो है उसका जिक्र किया गया है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। रुक करते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार का जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। परिमल, अप्रैल में ही हमने देखा था टाटा ग्रुप के जो स्वामित्व वाली विस्तारा एयरलाइंस है उसको भी पायलट्स की नाराजगी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और उस वक्त भी 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द की गई थी, यात्रियों को दिक्कत आई थी। अब फिर एक बार इस तरह की दिक्कत आ रही है, कई यात्री जो हैं आखिरी वक्त तक उन्हें जानकारी नहीं दी गई है। क्या कुछ इस वक्त समझ में आ रहा है समस्या को लेकर, क्या जानकारी अब मिल रही है?
देखिए, शुरुआत में तो यही समझना है अदिति कि भरोसा खोया है एयर इंडिया ने अपने यात्रियों को लेकर और एम्प्लॉय को लेकर, क्योंकि ये अचानक से उठाया गया कदम नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत उठाया गया कदम है। क्योंकि जिस चिट्ठी का आप जिक्र कर रही हैं वो अप्रैल के तीसरे हफ्ते की है और वहाँ पर जब ये विवाद पहले से ही गहराता जा रहा था तब इसको सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यात्रियों के संकट का है जिसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, करीब 90 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानें जो हैं वो रद्द कर दी गई पड़ी। कल देर रात से ये मामला सामने में निकल कर आया लेकिन इसकी जड़ जो है वो पुरानी है। पुराने समय में प्रबंधन से बार बार कोशिश की गई लेकिन उस तरफ प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि एक मास सिक लीव जो है एम्प्लॉय ने ये बड़ा स्टेप उठाया है, अपने आप में एक ऐसा स्टेप जिसमें नौकरी भी जा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर चिट्ठी का हवाला देखें तो उसमें भी कहा गया है कि मर्जर के बाद से भी नौकरियां गई हैं जिसको लेकर ये शुरुआत में कहा गया था कि 2 साल तक नौकरियां नहीं जाएंगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बार बार उठाए तो जा रहे थे लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और अब जो एयर इंडिया की तरफ से बयान आया है उसमें कहा जा रहा है माफ़ी मांगने की भी बात है यात्रियों से जिनको मुश्किलें आ रही हैं, उनको रिफंड करने की भी बात है, रिशेड्यूल फ्लाइट करने की भी बात है, मैनेजमेंट से बात करने की भी बात है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब ये मुद्दा सुलग रहा था उस वक्त मैनेजमेंट ने उन यूनियन से बात क्यों नहीं की, उनके प्रतिनिधि से बात क्यों नहीं की ताकि इस तरीके के मुद्दे इतने गहराते नहीं और इतना बड़ा संकट यात्रियों के लिए खड़ा नहीं होता।
बिल्कुल परिमल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो परिमल और सुजाता जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये संकट अचानक नहीं गहराया है, बहुत वक्त से जो कर्मचारी हैं एयर इंडिया के उनमें कहीं ना कहीं असंतोष था, उनमें नाराजगी थी, कई सारी शिकायतें वो कर रहे थे लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं किया गया, उन्हें सुना नहीं गया, नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद ये स्थिति पैदा हुई है और अब अचानक एक इतना बड़ा संकट एयर इंडिया एक्सप्रेस के सामने खड़ा हो गया है। अब सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ानें रद्द होने के बारे में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और ये कहा है कि वो मामले को जल्द से जल्द हल करें। साथ ही ये भी सलाह दी गई है कि वो DGCA के कायदे कानूनों के हिसाब से मुसाफिरों को सुविधाएं मुहैया करवाएं। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि संकट जो है किस तरह से इसका सामना किया जाता है और कितना वक्त इसे हल करने में लगता है। तो अब आगे बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं जहां पर जंगलों में जहां तहां लग रही आग जो है उसकी आंच अब सरकारी अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 17 लोगों पर कार्रवाई की गई है, 10 अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित यहां पर किया गया है, 2 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, 5 को मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। तो यहां पर कार्रवाई होती हुई हम जरूर देख रहे हैं लेकिन अभी तक समस्या का जो एक निदान होना चाहिए, एक जो कारगर कदम उठाए जाने चाहिए उसको लेकर चिंता अभी भी बनी हुई है। तो तो कई तरह के कदम उठाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। जंगलों की आग की तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं जो परेशान करने वाली हैं, और इस आग को लेकर उत्तराखंड की अब सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा हुआ है। चिंता जाहिर की है कोर्ट ने और कहा है कि हम बारिश या क्लाउड सीडिंग के भरोसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते, सरकार को कारगर रूप से कुछ करना होगा। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने आग लगने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए इन पर शीघ्र लगाम लगाने के लिए सरकार को आदेश देने की गुहार यहां पर लगाई है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग कुछ जगहों पर बुझ चुकी है, लेकिन इसमें ज्यादा योगदान मौसम का है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर ओलाबारी और बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तराखंड के मौसम विभाग के मुताबिक 8 जिलों में ओलाबारी के आसार बताए जा रहे हैं, और इसके चलते ये माना जा रहा है कि हो सकता है कुछ हद तक और इस आग पर काबू पाया जा सके। तो यहां पर सरकारी कार्रवाई और मौसम बदलने से पहले ही नुकसान जो है वो काफी हो चुका है और भी हो रहा है। उत्तराखंड में अब तक 1316 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। गढ़वाल में पिछले 24 घंटों में 5 जगहों पर और कुमाऊं में 55 जगहों पर आग की घटनाएं हुई हैं। किशोर रावत बता रहे हैं कि उत्तराखंड के जंगल किस संकट से गुजर रहे हैं।
पहाड़ों पर आग लगी है और ये आग किसी की रोके रुक नहीं रही है। एक जगह अचानक आग शुरू होती है और एक लकीर सी खिंचती चली जाती है। जरा सन्नाटे में इस आवाज को महसूस कीजिए। ये आग की आवाज है। पहाड़ों पर चीड़ के जंगलों के बीच खुद ही अपने लिए रास्ते बना रही है और खुद ही अपनी सीमा तय कर रही है। जंगल की आग को करीब से देखने, इस समस्या को समझने और आप तक पूरी खबर को पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता किशोर रावत पहुंचे उत्तराखंड के श्रीनगर में।
लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है। 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं। करीबन 900 के करीब आग की घटनाएं हुई है। इसके अलावा गढ़वाल और कुमाऊं के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जहां आग ना लगी हो।
आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी कैसे। इसके लिए दो शब्दों को याद रखिए, चीड़ और लीसा। हमारे संवाददाता किशोर रावत आपको इनके बारे में जो बातें बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनने और समझने की हैं।
उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लग रही है उसका सबसे बड़ा कारण चीड़ के पेड़ है, और चीड़ के पेड़ चूंकि जो उसका एक द्रव्य निकलता है लीसा कहते हैं उसको, और लीसा पूरी तरह से जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल में एक माचिस अगर तिल्ली भी झाड़ दिया है तो कितनी आग लगती है भयानक, वैसे ही चीड़ का जो लीसा होता है उसमें आग लगती है। उसके साथ चीड़ की जो पत्तियाँ होती है उसे पिरुल कहा जाता है, और पिरुल इतनी खतरनाक होती है, एक तो जंगलों में अगर ज़्यादा गिर जाए तो चलना मुश्किल होता है, और दूसरा इतनी सूखी हो जाती है कि इसमें आग बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो ये बेहद खतरनाक है। और अक्सर लोग चारे के लिए शरारतों से या फिर कि अगर ये से जला दिया जाए तो अच्छी घास आएगी बरसातों में, और उसके लिए भी आग लगाते हैं।
कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है वन क्षेत्र में जानबूझ के आग लगाई जा रही थी, और कुछ केस में इस तरह का भी आ रहा है कि भविष्य में अच्छी घास आने के लिए उनके पशुओं के लिए इस तरह से भी आग लगाई जा रही थी, तो हम दोनों तरह से कार्रवाई कर रहे थे।
हमने स्थानीय लोगों से भी बात की तो पता चला कि आग की वजह से उन्हें सांस लेने तक में दिक्कत हो रही है, पशुओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा है सो अलग।
गर्मी में जो है कि चीड़ की जो पत्तियां होती है वो नीचे सूख के जमीन पर गिर जाती है, तो उसमें लोग अगर थोड़ी भी चिंगारी फेंक देते हैं, आग की चिंगारी, तो वो एकदम से आग पकड़ लेते। पूरा उत्तराखंड का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल ही दिल्ली की तरह हो चुका है।
लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बाकी हम लोगों से चाहते हैं कि ज़्यादा जंगलों में आग ना लगाएं।
जब यहाँ जंगलों में आग लग रही है और जो हमारे पशु जो भी वन्य जीव है वो शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, इससे हम लोगों को खतरा बनता है।
स्थानीय लोगों के लिए फिलहाल मजबूरी का नाम आग है, ना तो बुझा सकते हैं और ना ही किसी से शिकायत कर सकते हैं।
उत्तराखंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां इस वक्त आग ना लगी हो। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक है और धुआं भी काफ़ी उठ रहा है। ये एक गांव है जहां पर ये आग बढ़ती जा रही है और ये कुछ यहां पर स्थानीय लोग हैं जो खुद ये आग बुझा रहे हैं।
पहाड़ों में आग कोई नई बात नहीं है, प्रशासन ने आग बुझाने के लिए टीम भी लगाई हुई है, लेकिन आग का दायरा इतना बड़ा है कि समाधान के लिए फिलहाल आसमान की ओर देखा जा रहा है। उम्मीद है कि बरसात होगी तो आग की ये लपटें भी शांत होंगी।
बहरहाल अगर जंगलों की आग को रोकना है तो आम लोगों को इसके प्रति संवेदनशील होना होगा। तो इसके अलावा जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करनी होगी, तब जाकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिल पाएगी। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।
हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, जिससे सरकार पर संकट आ गया है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार स्थिर है और उसे बहुमत हासिल है। उन्होंने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी चीजें करती रहती है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए हैं जबकि सरकार को कोई खतरा नहीं है। उनसे बात की हमारे सहयोगी गुरप्रीत सिंह चिन्ना ने।
लोगों को इस बात का विश्वास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ सकता है और जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी लेते हैं उस संकल्प के ऊपर देश विश्वास करता है। तो क्योंकि कांग्रेस के बातों के ऊपर, घोषणाओं के ऊपर आज देश का विश्वास उठ चुका है।
सर, जो हरियाणा में जो लगातार उथल पुथल चल रही है इसको कैसे देख रहे हैं? जो तीन इंडिपेंडेंट एमएलए है वो वहां चले जाते हैं, उसके बाद लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं?
देखिए, कांग्रेस की नीति रही है भ्रष्टाचार को जन्म देना और वो झूठ बोल करके लोगों को सजब आग दिखा करके बरगड़ा करके वो अस्थिरता का माहौल पैदा करते हैं। पीछे भी आप लोगों ने देखा, राहुल गांधी साहब जा करके जेएनयू के अंदर जो देश के टुकड़े की बात करता है उसको समर्थन देते हैं। और आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों राहुल गांधी बोलते हैं मंच से कि मैं एक झटके में गरीबी समाप्त कर दूंगा।
तो आपको क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल डील हुई है कल जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास चले गए? क्या
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है, इसको पूरा प्रदेश भी जानता है, पूरा देश भी जानता है कांग्रेस के चरित्र को, कांग्रेस के जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनको पूरा देश जानता है।
मेरा सर लास्ट सवाल है कि क्या हमारी सरकार स्टेबल है? क्या हमारी सरकार स्टेबल है? हमारे
नहीं, देखिए अभी 10 मेरे ख्याल से एक महीने पहले विश्वास प्रस्ताव हमने हासिल किया है। हर बार कांग्रेस पार्टी चाहे केंद्र है चाहे प्रदेश है, इनका तो एजेंडा एक ही है, विश्वास प्रस्ताव के ऊपर बात करो। ये केंद्र में भी लेकर के आए, इन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी। ये प्रदेश में हर बार लेकर के आए, अपने मुंह की खानी पड़ी।
तो सरकार स्टेबल है हम कह सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि सरकार बिल्कुल स्टेबल है और जो जो यहाँ पे अगर नंबर की बात करें तो उनके पास नंबर भी है। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना, एनडीटीवी करनाल हरियाणा।
हालांकि हरियाणा विधानसभा की तस्वीर इसकी तस्दीक नहीं कर रही है। बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे तीन निर्दलीय विधायकों ने नायब सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और तीनों विधायक अब कांग्रेस के साथ आ गए हैं और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो 90 सदस्यों की विधानसभा है उसमें फिलहाल 88 सदस्य हैं। बहुमत का आंकड़ा जो है वो 45 का है। तो अगर हम देखें तो बीजेपी के पास इस वक्त 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, जेजेपी जो अब अलग हो चुकी है सरकार से उसके पास 10 विधायक हैं, इनेलो के पास एक, हरियाणा लोकहित पार्टी जो है उसके पास भी एक विधायक है और निर्दलीय जो है वो 6 हैं। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या जेजेपी कोई खेल करेगी या हरियाणा की राजनीति किस ओर बढ़ेगी, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। हॉट सीट पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट हमेशा चर्चा में रहती है। यहां से मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी। इस बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है और ये माना जा रहा था कि कांग्रेस से राहुल गांधी यहां से स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का फैसला लिया। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला अमेठी पहुंचे, वहां की जनता से बात की, वहां के मुद्दे जाने। आइए देखते हैं क्या कहती है अमेठी।
मैं इस वक्त देश की सबसे हॉट सीट जो मानी जा रही है अमेठी संसदीय क्षेत्र, उसके अंतर्गत एक आनंदपुर चौराहे पर मैं मौजूद हूं और यहां के लोगों की राय जानते हैं, क्योंकि यहां पर स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार की ये परंपरागत सीट मानी जाती थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने यहां से चुनाव न लड़कर वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। सर आप कहाँ रहते हैं?
बस यही आनंद नगर चौराहे।
आनंद नगर, किस किस के बीच मुकाबला है?
मुकाबला दोनों के बीच में है।
दोनों के बीच में
कांटे की टक्कर है।
तो किसका पलड़ा भारी है?
अब ये तो कहा नहीं जा सकता।
सर राहुल गांधी अगर नहीं लड़े हैं तो आप समझ रहे हैं कि कुछ अलग है मामला?
हाँ कुछ। अच्छा, राजू गांधी की बात, राहुल गांधी की बात अलग थी, किशोरी लाल शर्मा और इनके इनकी बात अलग है।
अच्छा, क्या अलग है? जैसे
देखिए, अब किशोरी लाल शर्मा को कुछ लोग कम पसंद करते हैं।
क्यों?
अभी ज्यादा तो फील्ड में वो निकले नहीं है।
हाँ।
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं।
के लड़त है ये तो बताइए हो, के लड़त है
भैया? यहाँ जो ने कहा थे स्मृति ईरानी जी लड़त थी।
हाँ।
और किशोरी लाल शर्मा जी।
किशोरी लाल शर्मा जी,
हाँ मालूम हुआ
तो
है भैया।
सबसे अच्छा की का जाना तो, मतलब स्मृति ईरानी ठीक जाना तो कि किशोरी लाल शर्मा जाना तो, कि दोनों जन का नहीं ठीक जाना?
भाई देखो, हम जानकारी में तो ज्यादा हमारे है नहीं, लेकिन यह है कि आपकी बदलाव है।
अच्छा,
बदलाव की लहर है भैया। अब हम लोग जो है वोट कर पे जो है किशोरी लाल शर्मा का।
क्या बताएं भैया, जो आप उसे बताएं।
क्या नाम है आपका?
अनवर अहमद।
अनवर अहमद जी, किका अनवर भाई, किका इस वक्त
जो रोजगार शिक्षा के लिए काम करेगा उसी को वोट देंगे।
अच्छा, तो कोई काम कर रहा है
अभी सरकार में? तो कुछ नहीं हुआ, अगली सरकार में जो करेगा उसी को वोट देंगे।
अच्छा, चाय की दुकान है, ये चाय की दुकान पे चलते हैं। वहाँ बड़ी इस वक्त शाम का वक्त है, तमाम सारे लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सत्यम सिंह ने बताया है कि यह भाजपा और ये कांग्रेस है। अब भाजपा और कांग्रेसी दोनों लोग जो है, चूंकि हम भी अवध के रहने वाले हैं तो थोड़ा अवधि में बात करेंगे कि कांग्रेस और भाजपा, तो भैया कांग्रेस और भाजपा ही तो आप लोग एक साथ कैसे बैठे हुए हो?
नहीं नहीं, इस तरह तो हम लोग साथ बैठते हैं।
हाँ।
लेकिन अगर जब इलेक्शन का होता है दूर बना लेते हैं हम लोग, दूर दूर हो जाते हैं।
अच्छा,
हाँ, 15 तारीख को हम लोग अलग अलग हो जाएंगे।
अच्छा, 15 तारीख को एकदम बर्लिन की दीवार खींचा
15 का, ये वही कहती हम ये कहती।
और जैसे चुनाव निपटी तब उसके बाद
तो फिर ये कट्टा।
अच्छा, आपसे पहले पूछित है, ये बार राहुल काहे नहीं लड़ी ना? आखिर जब आप
राहुल ही नहीं, समय मना कह दे।
अच्छा,
सब मना कह दे, राहुल
मना कह दे,
बीजेपी वाले मना कह दे, भाग गए।
अच्छा, तो राहुल नहीं लड़ रहे हैं तो उसका कोई फर्क पड़ेगा? आप देख रहे हैं कुछ फर्क
पड़ेगा?
नहीं बताओ,
फर्क तो बहुत पड़ेगा।
फर्क पड़ेगा।
फर्क
का पड़ेगा, आप कहा सोचो? तो
मतलब क्या फर्क? लड़ाई बराबरी में होती है।
बराबर
है? लड़ाई जो होती है वो बराबरी में होती है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने के स्मृति ईरानी में इतनी हिम्मत नहीं है कि बराबर चुनाव लड़ पाए। उन्होंने अपना शागिर्द भेजा है यहाँ के लिए। अच्छा। आप उनसे निपट के दिखाइए, फिर राहुल गांधी लड़ेगा।
पिछली बार तो स्मृति ईरानी राहुल गांधी लड़े।
समय जो होता है, समय बहुत बलवान होता है। समय जब खराब हो तब ऊंट पर बैठा हुआ आदमी को कुत्ता काट लेता है। इस बार वो समय नहीं है, लहर कुछ और है। हर युवा चाह रहा है कांग्रेस सरकार आए।
अच्छा।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए इतना अनर्गल काम किया है, आप ये समझिए कि जीवन नरक हो गया लड़कों का।
अच्छा।
नहीं, ये युवा
भटका हुआ है। देखो वो बता रहे हैं युवा भटका हुआ है। अच्छा, अब आप क्या कहा? तो
युवा बने भटका हुआ है।
पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई को हरा नहीं सकता है।
अच्छा,
ये मेरी गारंटी है।
अच्छा,
मैं दावे के साथ कहता हूँ।
कैसे कैसे दावा, कैसे दावा कर रहे हो?
दावा तो पिछली बार आपने देखा है।
हाँ।
ये लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे।
हाँ।
हार रही है, हार रही है, हार रही है, कितनी बड़ी बड़ी सुंदर बहुमत से जीते।
अरे गारंटी मायावती कहाँ है?
कहीं नहीं है, मायावती कहाँ है?
अच्छा,
कोई पार्टी कहीं है ही नहीं है भाजपा के अलावा।
इनके होटल है उनसे हम बात कर रहे हैं, समोसा तल रहे हैं। आपके आपके तो होटल पे यहाँ सभी सब लोग आते हैं, कहाँ है कोई? ठीक है,
देखिए जो हम लोग यहाँ बैठ के जो बातचीत करते हैं उससे कुछ युवा नाखुश है। कुछ लोग कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, देखिए कुछ लोग भाजपा की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा, मैं बता रहा हूँ, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, मैं आपको सच्चाई बता दूं क्योंकि मैं अभी भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, तो सच्चाई ये है कि कुछ हमारे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भाजपा से कुछ गुस्सा है।
गुस्सा है?
हाँ, अब वो किस बात को लेके गुस्सा है वो हम भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि भाजपा में कुछ उथल पुथल चल रही है, आपको पता ही है।
अच्छा
जी, लेकिन जहाँ रही बात जीत की, वहाँ भाजपा के अलावा कोई जीतेगा नहीं।
तो किशोरी लाल अगर यहाँ से राहुल गांधी लड़ते तो?
नहीं नहीं, राहुल गांधी अगर लड़ते तो देखिए यहाँ पे 60-40 की मार होती।
40 की कम?
मतलब कि 60% भाजपा, 40% वो, मतलब लड़ाई होती कांटे की। लेकिन किशोरी लाल शर्मा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं।
अच्छा,
एक तरफा चुनाव है, कोई दिक्कत इसमें कोई वो नहीं।
चलो भैया, युवा युवा काहे भाग रहा है यार, काहे भागा? तो
भाग रहे
तो कहा है के लड़ा लड़ा
तो स्मृति ईरानी ही जीते।
अच्छा, क्या नाम है?
विपिन। विपिन
विपिन तो कहा है, किस बात से वो जीतेंगे?
अरे काम अच्छा कर रहे हैं इसके लिए।
क्या काम अच्छा किया?
सड़क बनवा दिए, जो इतने साल से खलिंजा था सब सड़क बनवा दिए, सब आदमी देख
लोग कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत है।
अरे उनको बोलने वाले बोलने दो, बस यहाँ स्मृति ईरानी ही जीते।
आपको रोजगार मिला है कि नहीं?
बिल्कुल मिला है।
अच्छा, क्या काम करते
हैं? मैं तो कपड़े लाइन में काम
करते हैं। चाचा कौन गाँव रहा तो?
हम यही बाबूपुर सरैया।
बाबूपुर सरैया?
हाँ।
तो ये आप सब्जी आपके खेत में उगी है कि आप लोग लेके आए?
नहीं, हमारे खेत की है।
आपके खेत की है?
हाँ।
तो चाचा, इस बार आपके यहाँ स्मृति ईरानी जी लड़ रही हैं और शर्मा जी लड़ रहे हैं, तो क्या है, किसके बीच लड़ाई है?
ये तो वोट के समय पता लगेगा।
हाँ,
हाँ। लेकिन अब से हम हाँ के का करी, हम झूठ बोली तो हाँ करी, झूठ बोलना नहीं है।
अच्छा चाचा, कुछ विकास हुआ है, कुछ आप लोगों का सहूलियत मिली है?
सहूलियत बहुत कुछ मिली है।
क्या?
अरे जो रोड बने का आशा है, अब रोड बनने का है, यही है और का है,
रोड बन गया है।
हाँ, रोड वो बन गया है।
राहुल गांधी नहीं लड़त है, तो उनके बारे में क्या सोच है?
अब राहुल गांधी नहीं लड़ती, उनके पौरुख है, हमारे पौरुख तो लागे के नहीं। हाँ भाई, उनकी पौरुख हुए वो लड़े, और ना पौरुख हुए अपने घर में बैठे हैं। और राहुल गांधी तो एक बात बताई, वो आसमानी बात कर रही थी, धरती से बात नहीं करती। एक तो
धरती से बात कर
वो आसमान से बात कर, धरती से बात नहीं करती।
अच्छा,
क्यों? वह 5 साल अब मुंह दिखाई नहीं।
अच्छा,
बीच में जैसे आप समझते हो कि हमारे मन यही, तो बीचों में तो कहो आवे के चाहिए, बीच में क्यों नहीं आए वो?
अच्छा, राहुल गांधी बीच में नहीं आए,
कहाँ आए? 5 साल की बात है आए।
रानी जी,
ये तो आवा कर रही बीच बीच, इनका तो घरों ही बना है।
अच्छा,
हाँ।
ये आपने सुनी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। 20 तारीख को नतीजे के वक्त पता चलेगा कि आखिर अमेठी की जो सियासी तस्वीर है वो क्या रहेगी। अमेठी से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
शोर कम काम ज्यादा, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किरदार से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने इस कहावत को काफी हद तक सही साबित किया है। ये शख्स हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके स्वतंत्र देव सिंह फिलहाल यूपी के जल शक्ति विभाग के मंत्री हैं। हाल ही के दिनों में उन्होंने अपने विभाग में काफी काम किया है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट।
देश के कई राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में भी पानी की कीमत का मोल इस इलाके में रहने वालों को पता थी। घर से दूर पैदल चलकर पानी भरने जाना, सरकारी टैंकर के हफ्ते में एक बार मोहल्ले में आने पर बाल्टी लेकर संघर्ष करना और कभी कभी सूखे गले से आकाश को ताकना। ये इलाका है बुंदेलखंड।
पहले तो इस तरह की दिक्कत होती थी कि यहाँ से जाके कम से कम 500 मीटर की दूरी में पानी लेने जाना पड़ता था। इसके बाद आज की डेट में जब ये जल योजना चली है तो आज बहुत अच्छी जो है तो पानी की सुविधा हो चुकी है और अब कोई दिक्कत नहीं है और समय की बचत भी हो रही है।
ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हजारों ऐसे लोगों की है जो बुंदेलखंड में रहते हैं और बीते 2 सालों में इनके घरों तक सरकारी पानी की पाइप पहुंची है। ये संभव हो पाया है केंद्र सरकार की हर घर नल योजना की वजह से।
हर घर नल कनेक्शन, जो कभी किसी को पानी नहीं मिलता था। आप देखते थे ट्रेन से पानी मंगाते थे बुंदेलखंड की थे, आज करोड़ों लोगों को घर पर नल कनेक्शन पहुँच रहा है।
हर घर नल देने की केंद्र की योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना है। बीते कुछ सालों में जल शक्ति विभाग ने न सिर्फ हर घर नल योजना को लेकर बेहतरीन काम किया बल्कि बाढ़ रोकने में भी बड़ी सफलता हासिल की है। नहरों की सफाई से लेकर नाड़ितों को साफ रखने के लिए एसटीपी प्लांट का निर्माण हुआ। जल निकासी, लघु सिंचाई, नलकूपों का निर्माण, बांध का निर्माण कराकर जल शक्ति मंत्रालय ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है।